सांकेतिक नाम है, उपलक्षणात्मक है। एक नाम उनमें मैं जोड़ देना चाहूंगा और वो है धीरेन्द्र। क्रांति के सारे विचार में उनका जो दान रहा है, योगदान, वो अपने ढंग का अनोखा है। जिसे ओरिजिनल आदमी कहते हैं ना, बिल्कुल रॉ, कच्चा, किसी तरह का संस्कार जिस पर नहीं हुआ, जो कभी पकाया ही नहीं गया, ऐसा मनुष्य ओरिजिनल, बिल्कुल मौलिक मनुष्य धीरेन्द्र थे। और हमारे विचार के लिए, हमारी क्रिया पद्धतियों के लिए उन्होंने हम लोगों को जो रास्ता दिखाया वो गांधी, विनोबा, जेपी, इन तीनों के रास्तों की परिपूर्ति करने वाला है, इसलिए उस नाम को भी आप जोड़ लीजिए। इतने विषयों की यहाँ चर्चा हुई, मानो पार्लियामेंट का बजट सेशन हो। पहाड़ से लेकर समुद्र तक सारे विषय आ गए। मुझे जो दो चार बातें कहनी है, आपका बहुत समय नहीं दूंगा, थोड़े में रखूंगा। बुनियादी बात यह है, यह सवाल बुनियादी है जो शुरू से मेरे सामने रहा है, यह समाज परिवर्तन कौन करेगा। मैं इसके दो हिस्से करता हूं कौन के, लेकिन मेरा अपना जवाब इसका यह है कि इस देश का अंतिम मानव करेगा। और अंतिम मानव से मतलब यह है गरीब से गरीब मजदूर और भंगी। इन दो, ये दो अगर इस क्रांति के विधाता नहीं होंगे तो सारे आपके कार्यक्रम, मैं जरा कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, बाबू लोगों के कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे। मैं भी उन्हीं लोगों में से हूं। बंकिम बाबू ने अपनी एक छोटी सी पुस्तक में बाबू स्तोत्र लिखा है, उसका उल्लेख सिर्फ कर देता हूं, आप कभी फुर्सत के वक्त नींद ना आए तो पढ़ लीजिए। उनके सारे लक्षण हम लोगों में हैं। एक अच्छाई है और वो यह है कि हम उस आखिरी आदमी को समाज परिवर्तन का विधाता बनाना चाहते हैं। हम उसके लिए क्रांति का ठेका नहीं है, हम किसी के ठेकेदार नहीं। एक चीज तो यह आप लोगों से साफ कह देना चाहता हूं, तब आप साधनों का विचार करें। वो लड़का बहुत साफ बात करता है, क्या नाम है उसका, अनिल। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, कुछ दिमाग साफ भी हो जाता है। चाले झुरमुट जड़ जाते हैं, लेकिन उन सब से जो नौजवान यहां आए हैं, उन सब से मेरा यह निवेदन है कि मार्क्स, गांधी, माओ, लेनिन और उससे पहले के फ्रांस और अमेरिका के सारे क्रांतिकारियों को मिलाकर विचार कीजिए, इनको बांटिए नहीं। इन सब ने एक दूसरे के काम की परिपूर्ति की है, एक दूसरे के काम को तोड़ा नहीं। और लेट नॉट जेपी बी द लास्ट प्रॉफिट। हु विल बी द लास्ट प्रॉफिट? Perhaps he is not yet born. कोई लास्ट प्रॉफिट हो ही नहीं सकता है। इसलिए जब साधनों का विचार करें तो उस मनुष्य के साधन का विचार करें जो सबसे आखिर में खड़ा है। जाति की परंपरा में, जाति के सोपान में और वर्ग के सोपान में भी, यानी आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में जो अंत में खड़ा है। गांधी ने हमको यह कसौटी बतलाई थी, बाबला ने, ये नारायण देसाई ने एक कसौटी बतलाई, लेकिन मैं ये गांधी की कसौटी आपके सामने रख रहा हूं। उस लड़के ने मुझसे सवाल किया कि नैतिकता क्या चीज है, तो मैंने उससे कहा कि नैतिकता जैसी कोई चीज समाज में नहीं है, उसको भूल जाओ। मनुष्य मनुष्य के साथ रहे, मनुष्य मनुष्येतर प्राणियों के साथ रहे, मनुष्य सृष्टि के साथ रहे, बस यही नैतिकता। और कोई नैतिकता नहीं है मित्रों। स्पिरिचुअलिटी हैज लॉस्ट इट्स सोल, रिलीजन इट्स गॉड, एंड सोसाइटी इट्स ह्यूमन बीइंग। इन सबको भूल जाइए। ये संगठित धर्म सब अधर्म है जितने हैं। नैतिकता एक ही है कि मनुष्य दूसरे के साथ रहना सीखे। इसी में से चारित्र्य आता है, इसी में से नैतिकता आती है। तो ये नैतिकता किस मनुष्य में आनी चाहिए? वो जो आखिरी मनुष्य है, जो कभी हमारी संस्कृति में और नैतिकता में शामिल नहीं हो सका, किसी संस्कृति में किसी नैतिकता में उसका कोई स्थान नहीं, न भंगी का है, न उस गरीब का है जो शायद इस पृथ्वी को भी भूख के मारे निगल जाना चाहता है। उसके दिल में नैतिकता कैसे आए? तो मैं कुछ डाउन टू अर्थ बात करना चाहता हूं, इस जमीन की बात। उसकी संख्या अगर अधिक है तो वो क्यों मोहताज? ये सवाल कभी किसी क्रांतिकारी ने अपने से पूछा? उसकी संख्या अधिक है और एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी हरेक को मतदान का अधिकार है। ये सब होते हुए भी रामचंद्र कहता है कि इससे मोर्चा लेना पड़ेगा, दूसरा कहता है उससे मोर्चा लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा? क्या वजह है कि उसके पास साधन होते हुए भी, साधनहीन होता तो बात अलग थी, उसके पास दूसरे साधन नहीं है, सत्ता नहीं है, संपत्ति नहीं है, हथियार नहीं है, ये साधन उसके पास नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में जो साधन चाहिए वो उसके साथ उसके पास है। वो साधन भी है और संख्या भी है। ये होते हुए भी क्यों वो आज तक मोहताज है और क्यों दूसरों का मोहताजता है? मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि सारे क्रांतिकारी मित्र इस प्रश्न को सोचें। पुरानी दादी की कहानियों में हमसे कहा जाता था कि राजा की दो स्त्रियां थीं, तो एक रानी दूसरे रानी के बेटे को मार डालना चाहती थी, तो खोज करती थी कि उसकी जान किस चीज में। पता लगता था कि राजधानी के बीचों बीच एक तालाब है, उसमें एक मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में एक पेड़ है, पेड़ पर एक तोता है और उस तोते में इस राजपुत्र की जान है। लोकतंत्र की जान कहाँ है? नागरिक का सत्व कहाँ है? वोट में। और इसी को हमने सबसे गौण माना है। वर्तमान परिस्थिति का विचार जो जो करना चाहते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इस तरफ को मुड़िए, सिंहासन से वोट में शक्ति अधिक है, ये कन्विक्शन, बुद्धि का निश्चय हमारा होना चाहिए, यह एहसास हम नागरिक को दिलाएं। This is people's politics. The voter's politics as distinguished from the politics of the candidate. उम्मीदवार की का लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र हमें चाहिए नागरिक का। लेकिन ये क्यों नहीं हो पा रहा है? हमने उसको अब तक ये समझाया कि जिसके पास सत्ता है, जिसके पास संपत्ति है और जिसके पास शस्त्र है, उसके पास शक्ति। सत्ता, संपत्ति और शस्त्र को बनाने वाला जो है उसमें कोई शक्ति नहीं मानी है। सारे क्रांतिकारियों ने एक मुख से एक ही बात कही है कि शक्ति औजार में है, न हथियार में है और न संपत्ति और सत्ता में। औजार ही सबको बनाता है, तो यह औजारधारी क्यों गुलाम रह गया है? किसी क्रांतिकारी ने उसको यह एहसास दिलाने की कोशिश नहीं की। तो जितने यहाँ नौजवान बैठे हुए हैं, उमाशंकर भाई ने कहा ना कि मैं देखता हूँ कि कितने कागे सिर वाले हैं, मैं तो सब में जो होरी हेटेड हैं, शायद उसमें सेकंड नंबर हूँ गादिवाकर जी के बाद। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि गुजरात जाए या कहीं भी जाए, ये कार्यक्रम बनाए कि वोट कहीं बिकेगा नहीं, वोट कहीं छीना नहीं जाएगा, डंडे और पैसे की जगह वोट लेगा। ये क्रांति की राजनीति है और इसके लिए किसी समय की मर्यादा की आवश्यकता नहीं। जिस दिन और जिस क्षण आप करना चाहें, उस दिन और उस क्षण यह हो सकता है। एक बात क्या करना पड़ेगा, जहां जहां मत निकलता हो या जहां जहां छीना जाता हो, वहां तरुणों के जत्थों को जाना पड़ेगा। ये मोर्चा होगा जहां पर आपको मुकाबला करना होगा संपत्ति का और डंडे का, थैली और डंडे का। इसको कोई आवश्यकता नहीं है बहुत लंबी, केवल मन के निश्चय की आवश्यकता है और कुछ काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है। दूसरी बात जिससे मैं कुछ घबरा गया हूं वो है डिसेंट्रलाइजेशन। यह नारा इतना भयानक है कि एक फेटिश बन गया है, एक नया देवता बन गया है। I want to submit in all humility, this is a false god which has failed. वो यदुनाथ ने बात कही थी डॉक्टर आंबेडकर। हमारे गांव क्या है आज? What is the texture of society? हमारे समाज का पोत क्या है? हमारे समाज का पोत संप्रदाय, धर्म, जाति और भाषा का है। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होगा समाज का छितराव, बिखर जाएगा सारा समाज। इस देश में आज जो कुछ भारतीयता थोड़ी रह गई है वो दिल्ली के भरोसे। हर एक में राज्याकांक्षा पैदा हो गई है, राज्याकांक्षा का वितरण डिसेंट्रलाइजेशन में है। डिसेंट्रलाइजेशन में तीन चीजें आनी चाहिए, नेबरलीनेस, फेलोशिप एंड शेयरिंग, जिसे फेस टू फेस सोसाइटी कहा। विनोबा बहुत प्रतिभाशाली हैं, तो उन्होंने को समझाया कि सारी पृथ्वी एक बड़ा लड्डू है, हमारा गांव एक छोटा लड्डू हो। और गांधी ने कहा कि ओशियनिक सर्किल होगा। हम जिस ग्राम राज्य की और जनता राज्य की कल्पना कर रहे हैं उसमें से हमारा समाज बिखर जाए। उस लड़के ने सवाल उठाया रिप्रेजेंटेशन का, इसको बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। रिकॉल का सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ है। इस रिकॉल से भी मैं बहुत डरता हूं। मैं जब खड़ा हुआ, एक ही दफा जिंदगी में खड़ा हुआ, उस वक्त मेरे चाचा थे, वो सनातनी ब्राह्मण थे। कहा, तुम स्वराज्य में लोग मत चाहते हो ना, तो पूछो लोगों से अस्पृश्यता निवारण तुम चाहते हो। अगर लोग चाहते हो तो तुम अस्पृश्यता निवारण का प्रस्ताव लाओ, नहीं तो मत लाओ। रिकॉल ऐसे मुद्दों पर हो सकता है। लगातार जैसे आज इलेक्शन पिटीशन चलती है, इस तरह से रिकॉल का आंदोलन चलता रहेगा। मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं, सतर्क कर देना चाहता हूं। ये समाज ऐसा है कि अगर अस्पृश्यता निवारण पर आप रेफरेंडम लेंगे तो हार जाएंगे। इस समाज में आपको कुछ मूल्यों को अगर बचाना हो तो आप पार्लियामेंट्री एब्सोल्यूटिज्म से आपको बचना हो। पार्टी वगैरह की कोई मैं आलोचना नहीं करना चाहता हूं, इतना ही आप लोगों को बदलाव लेना चाहता हूं कि आज के जन लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा अंतर विरोध है, कॉन्ट्राडिक्शन है, और वो यह है कि उम्मीदवार पार्टी का होता है, प्रतिनिधि लोगों का होता है। यह कॉन्ट्राडिक्शन जब तक है तब तक मैं वो लॉर्ड हैलिफैक्स का वाक्य कहा करता हूं, द पार्टी इज अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द पीपल। ये बड़े पार्लियामेंटेरियन का वाक्य है। ये कॉन्ट्राडिक्शन है इसलिए जब कहा गया कि जो डिफेक्ट होता है, पार्टी छोड़ता है, वो पार्लियामेंट छोड़ दे, तो मैंने विरोध किया। मैंने कहा इसका मतलब तो यह है कि पार्टी ही पार्लियामेंट बन गई। पार्टी को क्या हम पार्लियामेंट का स्थान देना चाहते हैं? इन पार्टियों में आपस में अब इतना भी ईमान नहीं रह गया है जितना चोरों के गिरोह में होता है। क्यों नहीं एक पार्टी कह सकती कि दूसरी पार्टी से जो आएगा उसको हम उस पार्टी की सेक्रेटरी के सम्मति के बिना नहीं ले? ये क्यों नहीं कह सकती? बिकॉज देयर इज हॉर्स ट्रेडिंग। इसका उपाय यह है मित्रों, और इस उपाय को हमें करना चाहिए सीरियसली कि एक पार्टी में से दूसरी पार्टी में अगर जाएगा कोई तो उसके लिए कुछ नियम होने चाहिए, कुछ शर्तें होनी चाहिए। सत्ता में रहने के लिए केवल इस तरह का पार्टी का अदला बदल चले, इसको रोकने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। कानून भी इसका उपाय नहीं हो सके। शिक्षण के बारे में बहुत कहने का अधिकारी नहीं हूं क्योंकि स्कूल मास्टर रह चुका हूं, लेकिन एक चीज कह देना चाहता हूं कि नई पीढ़ी पर संस्कार मत कीजिए। संस्कार से मेरा मतलब अपने संस्कार, गीता पुराण बाइबल। बहुत कोसा गया आज की शिक्षण पद्धति को, लेकिन मैं क्या आप कह सकते हैं कि मैं तो इसी में से पैदा हुआ हूं, और मैं आपसे कहता हूं कि सच बोलना चाहिए। मैंने अब हिंदी की पहली पुस्तक में सीखा भगवद गीता में, अंग्रेजी प्राइमर में सारे नैतिक पाठ, देयर इंसिनुएशंस मैंने वहां देखे, वहां पढ़े। इसलिए संस्कार अगर करने हैं तो मानवीय संस्कार कीजिए, दूसरे कोई संस्कार नहीं। एजुकेशन इज नॉट प्रोपेगेंडा, चाहे सरकार हो या फिर चाहे कोई धर्म हो या कोई समाज हो। ये संस्कार वगैरह सब गलत चीजें हैं। हम कोई बात दूध के धुले हुए नहीं है कि हम चाहें कि हमारी संतान हमारी तरह हो, नहीं होती है। ये ईश्वर की बड़ी कृपा कि हमसे भिन्न होती है और उसको होने देना चाहिए। ये एक ही बात मुझे शिक्षण के बारे में कहनी है, दूसरी एक बात कहनी है कि इस देश में शिक्षण सार्वत्रिक हो, सार्वत्रिक से मतलब ऐसा हो जिसमें जो सारे प्रांतों में समान हो। तो ये अरुणाचल जी और मैं एक दूसरे से मिल सकें, कोई समान चीज हम दोनों में हो, हम एक दूसरे की भावनाएं समझ सकें, हम एक दूसरे की भाषा और बात भी समझ सकें। ये शिक्षण में दूसरी चीज आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और तीसरी चीज जो मैंने सवाल के रूप में उठाई थी, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, तीसरी चीज यह है कि आज जो पढ़ा लिखा आदमी है वो शिक्षण नहीं चाहता, काम चाहता है। काम से मेरा मतलब जॉब। और जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो काम ही काम करता रहा है, वो आज का ही शिक्षण चाहता है। इसलिए शिक्षण में परिवर्तन नहीं हो रहा और कोई दूसरा कारण नहीं। सारे विद्यार्थियों के आंदोलनों का अध्ययन कीजिए। और राजा जी का अनुभव तमिलनाडु में ये रहा, इस संबंध में तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि एजुकेशन फंक्शनल नहीं होना चाहिए। मेरी दृष्टि में आर्ट का जो एजुकेशन है यही रियल एजुकेशन है। फंक्शनल एजुकेशन वो तो वोकेशनल है। एजुकेशन की कोई रोटी के साथ एजुकेशन का इक्वेशन नहीं, लेकिन आर्ट्स का एजुकेशन क्यों नहीं चाहता है आज का विद्यार्थी, उससे पेट नहीं भरता, वो एम्प्लॉयमेंट चाहता है। और जो काम करता रहा, मेहनत कश है, वो ये शिक्षण क्यों चाहता है कि वो काम से मुक्ति चाहता है, ह्यूमैनिटीज में आना चाहता है, कल्चर चाहता है। मैं उस समस्या का केवल स्वरूप आपके सामने रख रहा हूं, कोई जवाब नहीं दे रहा हूं। मैंने सोचा कि इस देश में शिक्षण में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। बरसों तक राष्ट्रीय शिक्षण का शिक्षक रहा, लेकिन हमारी संस्थाओं में लगातार लड़के कम ही होते थे, और हमारे बच्चे भी हम उन्हीं संस्थाओं में भेज रहे हैं जहां मान्यता है। क्या इसका कोई उपाय मैं सुझा सकता हूं? मैं तीसरी चीज पर आ रहा हूं, सोशल स्ट्रक्चर पर, सामाजिक क्रांति पर। इस विषय में मेरा आप लोगों से निवेदन यह है कि यह क्रांति बंटवारे से नहीं होगी। कितनी जगह किसको दी जाए इस बंटवारे से नहीं होगी। इसमें सरेंडर की भूमिका से जाना होगा। जिन लोगों को आज तक शिक्षण नहीं मिला है उनको यह शिक्षण लेने दीजिए। वो चाहते हैं तो लें। जो लोग समझते हैं कि यह शिक्षण बेकार बनाने वाला है उन लोगों को मिलकर दूसरे शिक्षण की योजना बनानी चाहिए। कुछ दिन उनको बाबू बनने दीजिए। ये जो भंगी है, चौहार है, जो बौद्ध और ईसाई हो जाने पर भी अस्पृश्य ही बना रहता है, अछूत ही बना रहता है। अभी आपके केरल में गया था, वहां के ईसाई मुझसे कहने लगे कि हमारे जो अछूत हैं उनको आप विशेष अधिकार क्यों नहीं दिलाते हैं, सहूलियतें क्यों नहीं दिलाते हैं। तो मैं तो अवाक रह गया कि क्रिश्चियन होने के बाद भी अछूत रह जाता है। ये जाति बड़ी भयानक संस्था है। उपाय क्या है? जो सवर्ण है वो 10 साल के लिए सरकारी नौकरियों का बहिष्कार करे। कहा यह गया था कि नौकरी और डिग्री का संबंध विच्छेद हो, वो जरूर कीजिए आप, लेकिन 10 साल के लिए जितने सवर्ण हैं वो सारी सरकारी नौकरियों का बहिष्कार कर दें। ये मैं उस लड़के से अनिल से कह रहा हूं। और जो अछूत हैं उनको जाने दीजिए। बिगाड़ेंगे लेकिन आज जितना बिगड़ा है उससे बहुत ज्यादा नहीं बिगाड़ सकते। इसके सिवा मित्रों इसका रेडिकल उपाय कोई नहीं है। ये प्रॉब्लम्स रेडिकल प्रॉब्लम्स और इसकी रेमिडी भी उतनी ही रेडिकल होनी चाहिए, नहीं तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। अब इसके लिए हिम्मत चाहिए। आप मुझसे कहिए कि सभा में पत्थर खाकर ये कहे तो अब मेरा शरीर भी कमजोर हो गया, दिल भी कमजोर हो गया। नहीं तो मैं ये कहता और कहता आया कि उन लोगों को मौका दीजिए। होता ऐसा है, मैं भी उनमें से हूं, अपनी पत्नी को बहुत मैंने स्वतंत्रता दी थी, लेकिन जिस दिन वो मुझसे इज्जत करने लगी मैंने कहा ये तो खराब हो गया, ये बहुत ज्यादा आजाद हो गई। जैसे स्वतंत्रता भी कोई जहर है तो उसकी मर्यादा नहीं देना चाहिए। जो जो स्त्री में चेतना बढ़ती जाएगी पुरुष डिफेंसिव पर चला जाएगा, और जो जो ये निचली जातियां जिन्हें हम कहते हैं ये जागृत होती जाएंगी ये सवर्ण डिफेंसिव पर चला जाए। ये मोर्चा है मित्रों, मैं आप मोर्चे गिना रहा हूं। आप इसके बाद एक चीज और, अब इस देश में लोकतंत्र इस मुकाम पर पहुंच गया है कि अब राज्य परिवर्तन से समाज परिवर्तन नहीं होगा। यह थियरी पुरानी हो गई। राज्य परिवर्तन से समाज परिवर्तन होगा अगर राज्य परिवर्तन नागरिक कराता है तो नागरिक के वोट से अगर राज्य परिवर्तन होता है, और वोट से मेरा मतलब वो वोट जो छीना नहीं जाता और जो बेचा नहीं जाता। लोकतंत्र के संदर्भ में, लोकतंत्र के साधन से अगर क्रांति करनी है तो और कोई उपाय नहीं। अंत में एक बात और कह दूं, अब समाज इस मुकाम पर पहुंच गया है, इस मंजिल पर, कि अब संस्था द्वारा क्रांति नहीं होगी। वी हैव reached the limit of institutionalism. आज का ओरिएंटेशन ही मनुष्य का ऑर्गेनाइजेशन में है। ये ओरिएंटेशन is no longer an individual, pure and simple. तो आज अब संस्था से क्रांति नहीं होगी, और मुझे क्षमा कीजिए, गांधी के नाम पर चलने वाली संस्थाओं से क्रांति बिल्कुल नहीं। They have become a part of the establishment, one and all. मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं, कल्याणकारी कार्य वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्रांति का कार्य करने की का सत्व का मादा अब उनमें नहीं रह गया। ये हमारी सारी संस्थाएं ब्याज पर चलती, इन सारी संस्थाओं में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, इन सारी संस्थाओं में यूनियनिज्म आ रहा है। तो मित्रों, ये कल्याणकारी कार्य हैं, इन संस्थाओं की जो भूमिका गांधी ने जिसकी कल्पना की थी वो संस्थाएं शायद कभी रही होंगी, आज वो अब नहीं है। अब नहीं है तो क्या उनका विसर्जन किया जाए? मैं ये नहीं कह रहा, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां ये तीन चीजें आएंगी, ब्याज पर संस्था चलेगी, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होगी, यूनियनिज्म वहां जहां आएगा वहां विश्वास शून्य होगा, परस्पर विश्वास, क्योंकि ये विश्वास को तोड़ने वाली चीजें हैं। अभी परसों कार्यकर्ताओं से बोलते हुए विनोबा ने कहा था कि मनुष्य के लिए श्वास की जितनी आवश्यकता है, सामुदायिक कार्य के लिए विश्वास की उतनी ही आवश्यकता है। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन यहां आए हुए सारे क्रांतिकारियों से यह है कि अपनी अपनी संस्थाओं से मुक्त हो जाए। निरुपाधिक होकर, गोकुल भाई ने तो सन्यासी कहा, उनका मतलब यह था कि घरबार, मैं घरबार की बात नहीं कह रहा हूं, गोकुल भाई घरबार की अपेक्षा आश्रम मठ और संस्था का प्रपंच भाग भयानक है। वो मनुष्य को अधिक बांधता है, पाप की अपेक्षा पुण्य में धोखा ज्यादा है, खतरा ज्यादा है, बंधन। शंकराचार्य ने कहा है कि मुमुक्षु के लिए धर्म भी पाप है, बंधन अपादकत्व, उससे बंधन पैदा होता है। ये न कर सके तो कम से कम इतना करें कि संस्था निरपेक्ष भूमिका से जितने व्यक्ति यहां एक दूसरे का भरोसा कर सकते हो वो मिल जाए। और दिवाकर जी की जो सूचना थी उसका अमल करें। मैं अपने कॉलेज का ड्रामा सेक्रेटरी था, तो एक दफा ड्रामा के लिए कुछ चीजें खरीदने गया बाजार में, 150 रुपए की चीजें खरीदी, अब वो दुकानदार मुझसे पूछता है कि बिल कितने का बनाओ, कि कितने क्या 150 रुपए का बनाओ। क्या तुम कभी सेक्रेटरी पहले रहे हो क्या? मैं नहीं रहा, तो अनुभव नहीं। आप पहले के सेक्रेटरी क्या करते थे? 150 रुपए का माल लेते थे तो 250 का वाउचर बना लेते। मित्रों, हिसाब रखना भी होशियारों की कोई कला, और वो बनाया जा सकता है, बहुत अच्छी है। हिसाब से विश्वास नहीं बढ़ता। गोखले गणित के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, प्रोफेसर थे, सार्वजनिक जीवन में पाई पाई का हिसाब रखते थे, लेकिन घर में कभी हिसाब ही नहीं रखते। लेकिन उनके घर के किसी आदमी ने यह नहीं कहा कि तू पैसा खा गया। लेकिन सर्व सेवा संघ से लेकर शंकराचार्य के पीठ तक सब जगह एक दूसरे के विश्वास का अभाव। वी आर इन क्वेस्ट ऑफ अ कॉन्सेंसस एंड द बेसिस ऑफ कॉन्सेंसस इज म्यूचुअल फेथ। ये म्यूचुअल फेथ आप लोगों में से जितने लोगों में हो, 10, 5, 15, वो लोग इकट्ठे आ जाएं और वो न्यूक्लियस होगा विच विल बी मोर पावरफुल देन लीजन्स। पलटनों की अपेक्षा उसमें अधिक शक्ति रहेगी अगर एक दूसरे का भरोसा है तो, विश्वास है तो। मुझसे कोई कहे कि शुरू बाबू ने ऐसा किया, मैं कहूंगा कि हो ही नहीं सकता। यह इस विश्वास का मैं अपनी सारी संस्थाओं में अभाव पाता हूं, इसलिए उन संस्थाओं में घुन लग गई। मनुष्यों में नहीं, यह संस्थाओं की बदौलत हुआ है। मनुष्य आज भी साथ खाते पीते हैं, रहते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन संस्था का सवाल आते ही पैकरा बदल जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो विचार के लिए आप लोगों की सेवा में मैं निवेदन करना चाहता था। मित्रों, हम और आप सभी समाज परिवर्तन करना चाहते हैं और पूंजीवादी संदर्भ में रह रहे हैं। पूंजीवादी संदर्भ में कोई पूरा नमूना नहीं बन सकता, कोई सेल नहीं, कोई आश्रम नहीं। 100% क्रांति का नमूना पूंजीवादी संदर्भ में नहीं बन सकता, कुछ ना कुछ समझौता करना पड़ता है। इसलिए मैंने धीरेन्द्र का नाम लिया। जेपी का जिस तरह का रहने का ढंग है, समझौता है। मैं जिस तरह से पल रहा हूं और खा रहा हूं, कॉम्प्रोमाइज, समझौता है। हमारी संस्थाओं को भी इस तरह से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन उस कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में हमारा रुख उसमें से निकलने का हो, उस कॉम्प्रोमाइज को पार करने का हो। हम क्या कहते हैं कि इट इज ए नेसेसरी ईविल। इसमें से ईविल तो भूल जाते हैं, सिर्फ नेसेसरी रह जाते हैं। वो फिर हमारी संस्थाओं का परमानेंट फीचर बन जाता है। इसका उपाय मैंने आप लोगों के सामने रखा कि म्यूचुअल फेथ हो, कॉन्फिडेंस हो। ये क्राइसिस कॉन्फिडेंस का है, इसलिए कॉन्सेंसस कहीं नहीं है, रूलिंग पार्टी में भी नहीं है, और रूलिंग पार्टी के घटकों में भी नहीं है, अपोजिशन में भी नहीं है, सोशल लाइफ में भी नहीं है। ये कॉन्सेंसस हम लोगों में, कुछ लोगों के हृदय अगर एक हैं तो उनमें से पैदा हो सकता है। आप और मैं सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि इस देश का भविष्य अगर उज्जवल है, और उज्जवल है मैं मानता हूं, इन नौजवानों से मैं निराश नहीं, ये हमसे अच्छे हैं, हम सुसंस्कारी थे लेकिन हमारे सारे संस्कार काउंटर बीट थे, जाली थे, नकली थे। इन नौजवानों में मेरा बहुत बड़ा विश्वास है, लेकिन इनको हम रोकें नहीं, गिरने दें, ठोकर खाने दें, घायल होने दें, इसी में से ये बढ़े। उनके जीवन की चिंता, उनकी अपेक्षा हमको अधिक है, इसलिए उन्होंने अपने जीवन के हमें ठेकेदार बना दिया। पढ़ते किसके लिए हो? मां बाप के लिए। काम किसके लिए कर रहे हो? सरकार के लिए। जी किसके लिए रहे हो? पुरोहित के लिए। कुछ अपने लिए वो कर ही नहीं पा रहा, गलतियां भी नहीं कर पा रहा, तो उसको गलतियां करने का मौका हम दें, ये बात आवश्यक है। हम सभी हार्नेस में मरना न चाहें, काम करते करते मरना न चाहें, उसको आगे आने में। और नौजवानों से मेरा ये निवेदन है कि दूसरे के आगे आने देने का मौका जो खोजता है वो जब